जी फरमाइए। लौह कलम सफा नंबर 7 से 14।
जी
जी बिस्मिल्लाह।
सर ये जो जिस्म होता है ये रूह का लिबास है।
बेशक।
ऐसे ही है ना?
बेशक।
तो सर ये हम जो वैसे लिबास पहनते हैं
जी जी
उसका काम तो जिस्म की हिफाजत है, तो ये जो हमारा जिस्म है ये तो रूह की ऐसी हिफाजत कर रहा है कि हमने बहुत मशकें कर करके तो फिर उससे आगाही हासिल होती है। तो सर इससे यही मैंने पूछना था कि इससे आगाही कोई और तरीका भी है या बस मशकें और ये ही है?
बड़ी सिंपल सी बात है
और...
जी बड़ी सिंपल सी बात है। मैं चूंकि ये बातें आगे जाके हजूर कलंदर बाब औलिया खुद वाजे करेंगे, ठीक है, मैं आपको खलासा अर्ज कर दे तो इंशाल्लाह आपकी बात समझ में आ जाएगी या बुनियाद बन जाएगी बात समझने के लिए। बात ये है कि एक जात है, दूसरी चीज उसकी सिफात है, तीसरी चीज कायनात। जात ने अपना डिस्प्ले करना चाहा। अब जात का तो कोई डिस्प्ले नहीं हो सकता, तो जात ने अपनी सिफात का डिस्प्ले किया। अब सिफात मैं आपको इसकी मिसाल देता हूं। अब मुसव्विर है, अब मुसव्विर कौन है? आप ये पीछे जरा आप साउंड को म्यूट कर दें जिनके पीछे से आवाज आ रही है बच्चे की। अब देखिए बड़ी सिंपल सी बात है, जब हम जात हैं यानी कि मैं एक जात हूं, अब मेरी सिफात में से एक सिफत है मुसव्विरी। अब मैं जब अपनी सिफत मुसव्विरी का इजहार करूंगा तो आप क्या कहेंगे? अगर मैं आपसे तारुफ कराऊं कि मैं मुसव्विर हूं तो आप कहेंगे जी कौन सी तस्वीर बनाई है? तो तस्वीर बनाकर अगर मैं दिखाऊंगा तो आप क्या कहेंगे? ये बड़ा अच्छा मुसव्विर है या बड़ी अच्छी मुसव्विरा है, यही कहेंगे ना? तो अब सारा खेल डिस्प्ले का आ गया, सारा खेल डिस्प्ले का आ गया, डेमोन्स्ट्रेशन का आ गया। जब तक किसी चीज का इजहार नहीं होगा हमें उसकी सिफात का नहीं पता चलेगा, हाँ या नहीं? यानी अगर हम अपनी जात से सरफे नजर करके जरा इसको अल्लाह की जात पे लगाएं, अब अल्लाह रब्बे करीम ने अपनी जात और सिफात का डिस्प्ले कैसे किया? कुन कह के, कायनात बना के। अब कायनात में उसने एक मखलूक बनाई यानी कि सारी मखलूकात बनी, उसके साथ साथ इंसानों की भी रूहें बनी। अब उसने इंसान की रूह को पकड़ा, व नफख्तो फीहे मिनर रूही, अल्लाह फरमा रहा है क्या कि मैंने अपनी रूह में से कुछ उसके अंदर फूंका। अब ये जो अपने हमारे आपके अंदर फूंका गया ये क्या है? ये अल्लाह की रूह में से कुछ सलाहियतें मुंतकिल की गई हमें। क्या की गई? कुछ सलाहियतें। हमने ये आयत पढ़ी, सबने सुनी, लोगों ने तर्जमा कर दिया अल्लाह ने अपनी रूह फूंकी। मैंने अर्ज किया कि अगर अपनी रूह फूंकी तो फिर तो मैं अल्लाह हुआ, अल्लाह भी है और उसकी एक रूह भी है। इस आयत से ये बात दो पता चली। और फिर अपनी रूह में से, मिनर रूही, अपनी रूह में से कुछ फूंका, क्या मतलब हुआ? रूह नहीं फूंकी, अल्लाह ने ये नहीं कहा कि वह नफख तो फी है रूही, अल्लाह ये क्यों नहीं कहा? क्या कहा? मिनर रूही, रूह में से कुछ फूका, यानी अल्लाह भी है और उसकी कोई रूह है। रूह का मतलब स्पिरिट, यानी असल, अपनी असल में से कुछ इंसान को वदियत किया। मैंने मुर्शिद करीम से सवाल पूछा, ये क्या फूका? अगर रूह फूकी होती तो मैं अल्लाह होता, आप भी अल्लाह होते। حضور مرشد کریم مسکرائے, کہنے لگے بھائی اللہ نے اپنی صلاحیتوں میں سے کچھ صلاحیتیں منتقل کی, اپنی صلاحیتیں, غور کرے, یعنی وہ صلاحیتیں جو دیگر مخلوق کو حاصل نہیں ہے. تو میں نے آگے سے منہ پھاڑ کے پوچھا جی کون سی صلاحیتیں؟ تو حضور مرشد کریم نے بڑے شفقت سے فرمایا غور و فکر کی صلاحیت, تفکر کی صلاحیت, یہ جو صلاحیت ہے یہ کسی اور مخلوق میں نہیں ہے. تاج الدین بابا اولیاء نے کیا کہا کہ فرشتہ بھی ایک تفکر ہے, جنات بھی ایک تفکر ہے, اور انسان بھی ایک تفکر ہے, لیکن فرشتہ جو ہے یہ بابا نور ہے اور جنات بابا ہیولا ہیں اور انسان بابا دل ہے, یعنی ایسا تفکر جو مٹی میں قید کیا گیا. آج بڑی مزے کی بات آپ کو سناؤں, میرے ذہن میں ایک سوال چلا کہ فرشتوں نے کہا کہ یہ جو آپ چیز بنا رہے ہیں یہ تو بڑا فساد کرے گا اور خون بہائے گا. اب اللہ رب کریم کہہ دیتے کہ نہیں یہ نہیں کرے گا تو انسان کر سکتا تھا؟ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ نہیں, اللہ نے کیا فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. ہم نے کبھی غور کیا کہ وہ کیا ہے جو اللہ جانتا تھا اور فرشتے نہیں جانتے تھے؟ اسی جہالت کا اظہار ابلیس نے کیا کہ وہ جنات میں سے تھا. اس نے کیا کہا کہ یہ خیر و من ہو, میں اس سے اچھا ہوں, کہ خلقتنی من نار, آپ نے مجھے آگ سے تخلیق کیا, وخلقت من طین, اس کو مٹی سے تخلیق کیا. اللہ نے کہا کہ مردود, اللہ نے اس کو رد کر دیا. تو کیا یہ سوال ہمیں نہیں پوچھنا چاہیے اللہ سے کہ بارے الہ تو نے مجھے اپنا نائب بنایا, اپنی کچھ صلاحیتیں میرے اندر منتقل کی, کچھ تھوڑی سی آگاہی تو مجھے فرمائیے نا کہ وہ کیا ہے جو آپ جانتے تھے اور فرشتے نہیں جانتے تھے. میں تو آپ کا نائب ہوں, آپ مجھے تو ذرا کیا کہتے ہیں شریک راز کیجئے, ویسے تو شرک جرم ہے. غور کریں, کبھی ہم نے سوچا پوچھا اللہ سے؟ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, اللہ نے مجھے اس سوال کا جواب اس مثال کی صورت دیا. آپ سرکنڈے کا ایک کمان بنائیں, اس میں تیر رکھ کے چلائیں, کتنی دور جائے گا؟ کم فاصلے تک جائے گا نا. اب اگر آپ کسی درخت کی ٹہنی لے کر اس کی کمان بنائیں اور اسے تیر رکھ کے چلائیں تو وہ زیادہ نسبتاً دور تک جائے گا. لیکن اگر آپ فرض کریں فولاد کی کمان بنائیں, کیونکہ اس میں لچک ہوتی ہے, وہ بہت ہی ٹھوس ہوتی ہے. اب جب اس کمان یعنی فولاد کی کمان میں, وہ جو آپ نے قصے کہانیوں میں ارجن کی کمان سنا ہوگا کتنی بھاری تھی کہ 10 بندے مل کر اٹھاتے تھے, اگر ایسی کمان میں تیر رکھ کے کھینچا جائے گا اور اسے چھوڑا جائے گا تو وہ کہاں تک جائے گا؟ ظاہر ہے بہت دور تک جائے گا, وہ مقام محمود تک پہنچے گا. فرشتے کہاں تک جاتے ہیں؟ سدرۃ المنتہا تک, وہ اپنی حدوں میں رہتے ہیں, ان کا تفکر ایک خاص حدود میں مقید ہے. جنات کا بھی تفکر اس انتہا تک نہیں پہنچ سکتا جہاں تک اللہ نے انسان کو شرف بخش ہے. اب یہ ساری کتھا آپ کے اس سوال کے جواب میں آ رہی ہے کہ اللہ نے انسان کو مادی جسم میں کیوں قید کیا, تاکہ جب یہ مادیت کی قید کو توڑے گا تو اس کی پرواز بہت طاقت سے اور بہت رفتار سے بہت دور تک جائے گی. کہاں تک؟ مقام محمود تک. کوئی بات سمجھ میں آئی ہے آپ کو؟
جی سر.
واضح ہو گیا देखें मादी वजूद में, देखें ना असल कहानी क्या है, अल्लाह ने हमें अपना नायब बनाया। अब नायब का देखें ना, मैं कारखाना चलाता हूँ, मैं अपना किसी को डिप्टी अपना वाइस बनाता हूँ, इंसान को वाइस जेरेंट कहा जाता है। यानी कि तो क्या मैं उसको पूरे कारखाने की सैर नहीं करवाऊंगा, मैं उसको पूरे कारखाने के निजाम से आगाह नहीं करूंगा। कारखाने का निजाम रूहानियत से शुरू होके तमाम आलमीन से गुजरता हुआ, वो लोहे महफूज आलम अरवा, फिर आलम तिमसाल, और फिर बरजख, और फिर उसके बाद नासूत, 8 स्टेशन गुजर के आप आए नासूत में, और अब यहाँ नासूत में से गुजर के वापस आपने अल्लाह तक जाना है। इन सारे मराहिल और सारे कारखाने कुदरत के शोबों से आगाह करने के लिए निज़ाम बनाया गया कि आपको मादियत का भी पता हो, आपको जहन का भी पता हो, आपको रूह का भी पता हो, और आपको जात का भी पता हो। अब हमने अपनी अकल की टांगे तोड़ी हुई और क्या कहते हैं, मुझे अल्लाह को क्या जरूरत पड़ी थी ये सब कुछ करने की, चुप करके मुझे शरीफ आदमियों की तरह भाई जन्नत में ही रहने देता, ये दरख्त लगाने की क्या जरूरत थी। हम अल्लाह की हिकमत को समझने के बजाय अगर अल्लाह पे ऑब्जेक्शन कर रहे हैं तो हम क्या हुए, हम क्या हुए भाई,
शैतान शैतान
बस बाज आ जाइए। ठीक है, देखिए ये सवाल आपका कितने जहतों से मैंने इसको वाजे कर दिया कि ये क्यों जरूरी था, अर्ज किया कि पूरे कारखाने कुदरत से वाकिफ कराने के। देखे ना, अगर मैं सिर्फ रूह की हालत में ऊपर ही बैठा, मुझे क्या पता कि मादियत की हदें क्या हैं, उनकी मजबूरियां क्या हैं, उनके मजे क्या हैं, उनके मकासद क्या हैं, वगैरह वगैरह पता चल सकता था। देखे ना, जब मैं पैदा हुआ तो मैं क्या जानता था, जात तो मेरी यही थी जो मेरी आज है, मैं आज भी वही बच्चा हूं जो पैदा हुआ था, तो सांस नहीं ले सकता था। जब मैंने सांस लेना शुरू किया मेरी मादी जिंदगी का आगाज हुआ। अब ये 74 साल हो गए मुझे सांस लेते हुए, तो क्या हुआ, मैं इन 74 सालों में किस किस तजर्बों से गुजारा गया, तो आज विजन कितना बड़ा हूं, तो मैं वही छोटा सा बच्चा एक दिन का, मेरे इनर में वही इंसान है ना, मेरी जात तो वही है ना, लेकिन अब वो जात कितने तजुर्बात और इल्म से बहरामंद हुई, फर्क नजर आ रहा है आपको। उस वक्त तो मैं ऐसी गुफ्तगू नहीं कर सकता था। इसी तरह जब मैं ये 17 स्टेशन पार करके वापस अल्लाह के साथ जाके बैठूंगा, और जो अल्लाह ने जिस मकसद के लिए मुझे तखलीक की है, मैं वो मकासद पूरे करूंगा, तो उसके लिए सारी तैयारी नहीं होगी, ये तैयारी से गुजरूंगा तो वहां पे सीट पे बैठूंगा ना, मैं तैयारी से ही घबरा गया। अब वाजे हो गया कि हजूर कलंदर बाबा वाले ने क्या फरमाया कि ये मादी जिस्म, उन्होंने ये मिसाल लिबास की इसलिए दी कि लिबास को क्या करते हैं, सुबह से शाम तक पहनते हैं या 2 दिन पहनते हैं, उसके बाद इसको उतार देते हैं, डिस्कार्ड कर देते हैं। भैया एक लिबास को आप 1 महीना पहनते हैं, 10 महीने पहनते हैं, उसके बाद क्या होता है, बचपन में जब पहले दिन जो कपड़े पहने थे वो 10वें दिन आपके बदल गए थे क्योंकि आप बड़े हो गए थे, फिर क्या हुआ साल के हुए तो क्या वो 10 दिन वाले कपड़े आपको पूरे आ रहे थे, तो वो डिस्कार्ड हो गए। डिस्कार्डिंग का क्या मतलब है, डिस्कार्ड होने से क्या मुराद है, इसी तरह ये बॉडी डिस्कार्ड हो जाती है लेकिन हमारी जात तो डिस्कार्ड नहीं होती ना, तो बात वाजे हो गई।
जी सर,
थैंक यू जी।
सर एक और सवाल था कि क्या हर इंसान रूहानी हो सकता है, क्योंकि
जी हाँ, ये
बड़ा था ना कि मैंने कहा था कि
ये बात तो
25,000 बंदों में से कोई एक आप
नहीं 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 देखें, बात ये है कि उन्होंने जो बात कही मैं उसकी भी शरह कर देता हूँ। हजरत कलंदर बाबा औलिया का जुमला पहले पढ़ लें, किताब के पहले ही सफ़े पे लिखा है ना, इंसानी तबाह की साख सरगर्मियों के पेश नज़र इंसान की तबीयत की तबाह की साख मुख्तलिफ होती है, पहला लिखा है कि नहीं? इंसानी सरगर्मियों के तहत तबाह की मुख्तलिफ साख्त होती है, जुमला है या नहीं? पहला जुमला। इसका क्या मतलब हुआ? इंसानी सरगर्म इंसान अल्लाह ने तो पूरा बनाया है, अब इंसान अपनी सरगर्मियों के पेश नजर अपनी कौन सी और कितनी सलाहियतें इस्तेमाल करता है ये उसकी मर्जी है। क्या लिखा है आगे? वो तरखान होना चाहता है, वो मुसव्विर होना चाहता है, वो कातिब होना चाहता है, वो लोहार होना चाहता है, या वो कोई रूहानी बंदा होना चाहता है। और करें लिखा या नहीं?
जी बिल्कुल लिखा।
क्या मतलब हुआ? फरमाया कि देखे ना, बितबा यानी तबीयत के लिहाज से वो हर चीज पे हावी हो सकता है, बशर्ते कि वो चाहे तो सही। अल्लाह ने इंसान को जो इख्तियार दिया है वो यही तो है कि वो क्या बनना चाहता है, वो अल्लाह वाला बनना चाहता है, अल्लाह ने पूरा इख्तियार दिया। अब आ जाए बात के जो हजूर मुर्शिद करीम ने कहा, उन्होंने फरमाया 1,25,000 बंदों में से, सॉरी 11,00,000 बंदों में से एक बंदा रूहानी होता है। कितना? हजूर सलाम के दौर में 25% लोग जो सिलसिले में दाखिल हुए यानी मुसलमान हुए वो रूहानी बने। उन्होंने ये फरमाया था कि हजूर सलाम के रूहानी तसर्रुफ का ये आलम था। देखें तसर्रुफ वो अपनी मर्जी से नहीं करते, तसर्रुफ करते वक्त जो अल्लाह वाले हैं वो आपकी मर्जी भी देखते हैं, आप बनना चाहते हैं तो बना देते हैं, अब नहीं बनना चाहते वो कहते हैं ऐश कर। अब हम बनना नहीं चाहते तो मुर्शिद करीम क्या तसर्रफ करें? अगर हम उनको कॉपी करने बैठ जाएं, आज की बात में इस दफा के शुमारे में क्या लिखा है हजूर मुर्शिद करीम ने, सालारे काफला का जहन अपनाते हैं, उसका इतबा करते हैं, तो काफला जो उसको मंजिल तक पहुंच जाता है, वरना वो अपनी मर्जी करते रहते हैं तो अपनी झाड़ियों में घुसे रहे। गोया चॉइस देखें, 1,25,000 में से एक बंदा जो है वो चूज करता है कि मैंने अल्लाह वाला बनना है, और अल्लाह का करम देखें कि अल्लाह बना देता है। अदरवाइज अल्लाह मियां सारों की जरूरतें पूरी कर रहे हैं हर तरह की, वो दुनियादार बनना चाहता है अल्लाह उसे दुनियादार बना देता है। देखे ना दुनिया के जितने कामयाब लोग हैं उन्होंने दुनिया में कामयाबी मांगी, अल्लाह ने दी या नहीं दी? कई लोगों ने कामयाबी मांगी लेकिन उसके लिए काविश नहीं की, लिहाजा कामयाब नहीं हुए अल्लाह के कानून है। तो अगर आप अल्लाह वाला बनना चाहेंगे तो ये सलाहियतें बदर्जा उत्तम हमारे अंदर मौजूद हैं, बशर्ते के हम तन मन धन कदमे धर्मे सुखने इसमें जुट जाए। देखे ना किसी भी चीज के हसूल के लिए अल्लाह ने क्या कहा, लैसल इंसान इल्ला मासा, इंसान के लिए कुछ नहीं है सिवाय इसके जिसकी वो कोशिश करे, जिसके लिए वो सही करे, जिसके लिए वो काबिश करे। क्यों जी? बात वाजे हो गई
सर? ये हमारी क्लासेस जी सर, हमारी ये क्लासेस जो है जो हम गौरव फिक्र कर रहे हैं ये भी तो इसी
बिल्कुल है ना? जी देखें मैं अर्ज करता हूँ, जब ये वीडियोस जो थी आखिरी वीडियो अपलोड हुई तो मैंने अपने बेटे के जरिए हजूर मुर्शिद करीम को इत्तला अर्ज की कि जी वो इसकी रीडिंग की आखिरी वीडियो आज यूट्यूब पे अपलोड हो गई है। तो हजूर मुर्शिद करीम ने एक तबसरा फरमाया कि भाई हजूर कलंदर बाबा औलिया ने फरमाया था जो इस किताब को खलूस नियत से समझने के जज्बे से इसका मुतालिया करता है अल्लाह का, उसका अल्लाह से रब्त और ताल्लुक कायम हो जाता है। गौर करें, ये सनद किसने दिए? हजूर मुर्शिद करीम ने अपने पीरो मुर्शिद के हवाले से। क्या कि अगर हम खलूस नियत से इसको समझने के लिए, इसलिए नहीं कि हमें कुछ हासिल हो जाएगा, इसलिए नहीं कि हमारा हमें कोई चार चांद लग जाएंगे, बस हम इस जज्बे से लगे रहें कि भाई हमें समझ के दिखानी है किताब। आखिर एक इंसान की लिखी हुई किताब है ना। देखे ना, हम अपने शऊरी निज़ाम से बाज आएंगे तो हजूर खलंदर बाब औलिया की इस इल्हामी तहरीर को समझेंगे। इस इल्हामी तहरीर को समझने के नतीजे में हमारा जहन किस काबिल हो जाएगा? वही की तर्जों को समझने का अहल हो जाएगा। और आखिरी जुमला क्या है इस किताब का? अगर हम वसी तर इत्तलात हासिल करना चाहते हैं तो हमें कुरान हकीम की तरफ रजू करना होगा। यह आखिरी जुमला इस किताब का, हाँ या नहीं?
जी सर।
क्या मतलब हुआ? कि पहले हम शऊरी तर्जों से तो आशना हैं, उनसे बाज आएं और इल्हामी तर्जों को अपनाएं और उसको समझें, तो फिर हम रफ्ता रफ्ता इस काबिल हो जाएंगे कि वही की तर्जों को समझ सकें। और हमारा असल मिशन क्या है? वही की तर्जों को समझेंगे तो अल्लाह के नायब बनेंगे ना। या यहां इस मुअद्दी शऊर में रहते हुए हम अल्लाह के नायब बन जाएंगे? इस तरह इस मुअद्दी शऊर में तो आपका बेटा आपका नायब नहीं बनता। भाई वो अपनी मर्जियां करता है या नहीं करता?
करते ही अपनी मर्जी है।
बस ये राज समझने का है कि मखलूक होने के नाते मुझ पे वाजिब है कि मैं अल्लाह की मर्जी पे चलूं। जहां मैं अपनी मर्जी पे चलूंगा जाहिर है मेरा रब्त अल्लाह से टूट जाएगा। ठीक हो गया?
यानी वहां पे भी जन्नत में भी अपनी मर्जी की थी?
हाँ हाँ,
आदम ने।
मजा आ गया, आप बात को समझ गए। देखें, आजादी का मतलब मादर पिदर आजादी नहीं है। आजादी का मतलब बड़े की मर्जी के मुताबिक इंजॉय करना है। देखे ना, आपका बच्चा जब छोटा था तो कैसे इंजॉय करता था, खुश रहता था, लेकिन आपकी नजर को फॉलो करता था। माँ चाहती थी सो जाओ तो वो सो जाता था, माँ चाहती थी कि वो खाए तो वो खाता था, माँ चाहती थी कि अब ये चले, उसे चलते देख के खुश होती थी तो वो चलता था। गौर करें, ये आजादी नहीं थी। किस चीज से आजादी? फिक्रो परेशानी से। फिक्रो परेशानी से वो आजाद था या नहीं?
था सर।
हम भी थे। हम पे भी तो ये दौर गुजरा ही है ना। आपको पता है हजूर मुर्शिद करीम ने एक जुमला इरशाद फरमाया, एक जुमला नहीं है, एक बात है और बड़ी जामे बात है। क्या? भाई रूहानियत जो है ये असल में बचपन की तरफ के सफर का नाम है। क्या मतलब? बच्चे जैसा तर्ज अमल, बच्चे जैसा तर्ज फिक्र, यानी माँ पे पूरी तरह डिपेंडेंट। हम अल्लाह पे क्यों नहीं है? ठीक हो गया
जी।
और कोई सवाल?
ये साफ और तबा के अतवार की पौधे भी मुख्तलिफ साफ सकते हैं
जी। हाँ
जिंदगी की सरगर्मी
जी जी। देखे ना, हर चीज की सिफात का तायुन कुल जात ने किया है, यक जात। ये पढ़ेंगे हम, ये चैप्टर तकरीबन 200 सफ़े पे है। कुल जात यानी अल्लाह की जात ने जो तसव्वुरात उनके लिए तय कर दिए कि ये अमरूद है, ये आम है, ये टमाटर है, तो ये हरी मिर्च है। और करें, अब अमरूद, टमाटर और हरी मिर्च अंदर कितने बीज भरे हुए हैं? इसी तरह आम में एक ही बीज है, बेर में एक ही बीज है। ये किसने तय किया कि इसमें एक ही बीज होगा? अल्लाह ने। तो ये जो तबा, तबा कहते हैं छपाई, वो जो छपाई हुई है हमारी, उसको तबीयत कहा जा रहा है। अब वो सरगर्मियों के पेशे नजर, अब किसी ने लोहार बनना है, किसी, हम देखें ना हमारे मुआशरे में ये सारे शोबे हैं ना, लोहार भी है, तरखान भी है, कातिब भी है, मुसव्विर भी है, राइटर भी है, ये सारे क्या हैं, शोबे हैं ना। डॉक्टर भी चाहिए आपको, पहले तो डॉक्टर नहीं होते थे, अब डॉक्टर भी चाहिए, फिर अब कंप्यूटर आ गया तो अब कंप्यूटर इंजीनियर भी चाहिए। तो ये तबाह की साख, तबीयत की साख्त के मुताबिक आपकी सरगर्मियां हैं, और सरगर्मियों के पेशे नज़र आपकी तबीयत वो मोल्ड ले लेती है जिस किस्म की सरगर्मियों में आप इन्वॉल्व हो जाते हैं। इसी तरह जमातात और वो नबातात, उनका शऊर चूंकि जामिद है, वो अपनी डगर पे चले जा रहे हैं, इसीलिए वो जवाब दे भी नहीं है। देखे ना, कभी अमरूद ने आम जैसी शक्ल नहीं इख्तियार करने की कोशिश की, वो नहीं किया किसी ब्यूटी पार्लर में कि मुझे अनार जैसा सुरख बना दो। वो अल्लाह के किए पे राजी हैं, हमने मेकअप इजाद कर लिए। ठीक हो गया जी? और कोई सवाल?
अस्सलाम सर।
जी वालेकुम सलाम।
सर ये जो है कलंदर बाबा औलिया अहमदुल्लाह का जो रंग है वो कलंदरिया है, तो उन्होंने उसमें लिखा है कि अजीमियों का कलर भी कलंदरिया है, तो जो तबा है हमारी, जो तबाही साख्त है, तो वो भी कलंदरिया है।
अगर आप अपनाएंगे तो कलंदरिया हो जाएगी, वरना जिस रंग में रंगे हुए हैं वो मुआशरती रंग चढ़ा रहेगा। देखिए ना, रंग से क्या मुराद है यहाँ पे? रंग से मुराद है असर लेना, सिबगतुल्लाह है, अल्लाह का रंग। वह मन आहसाना सिबगतुल्लाह, और अल्लाह के रंग से बेहतर रंग किसका है? अब अल्लाह का तो कोई रंग नहीं है, अल्लाह तो वराउल वराए बेरंग है। क्या कहा मैंने? वराउल वराए बेरंग, बेरंगी से ऊपर है वराए बेरंग, और वराउल वराए क्या हुआ? तो अल्लाह की जात तो असर लेना, अगर आप अल्लाह का असर लेते हैं तो अल्लाह के असर से बेहतर किसका? देखे ना, हम अक्सर ये जुमला कहते हैं, ये बच्चा बाहर लोफर लड़कों की सोबत में बैठता है, इसने उनका रंग अपना लिया, इस पे उसका रंग चढ़ गया। यहाँ पे रंग से क्या मुराद है? हैं? ये नीला पीला हरा, इसको रंग कह रहे हैं। इसी तरह कलंदर एक आजाद तर्ज फिक्र है, जो किसी चीज को सोचने में, समझने में ना ठिठकता है ना रुकता है, इस सेंस में वो आजाद होता है, समझने के लिए हर चीज में वो काबिश करता है, तजस्सुस करता है, कोशिश करता है, और समझता चला जाता है, रुकता नहीं है। ये है वो आजादी, ये फिक्र जिसको कलंदर कहते हैं। हजूर मुर्शिद करीम से जब मैंने ये सवाल पूछा कि जी कलंदर क्या होता है, कलंदर किसे कहते हैं, तो अब्बा ने पहला जुमला ये कहा कि ये क्वालिफिकेशन है, ये कोई डिग्री नहीं है, सॉरी कोई पोस्ट नहीं है, ये क्वालिफिकेशन है। यानी अगर कोई बंदा कलंदराना तर्ज फिक्र अपना लेता है तो वो कलंदर है। अगर आपने, मैंने हजूर कलंदर बाबा औलिया की सिर्फ पूजा ही की, उनकी एहतराम और उनकी अकीदत में गिरफ्तार हैं, और उनकी तर्जे नहीं अपना रहे, तो हमारे ऊपर कलंदरी रंग चढ़ेगा या मुआशरती रंग चढ़ेगा? देखे ना, हम सिर्फ हजूर कलंदर बाब औलिया का नाम लेवा हैं, लेकिन उनकी तर्ज फिक्र के हम हामिल नहीं हुए, तो हम पे उनका रंग चढ़ा? जी
तो सर, इसके लिए क्या तरीका है?
बड़ा सिंपल है, ये मुराकबा तसव्वुर शेख जो है, ये असल में इसी चीज का तो इलाज है। क्या? तर्ज फिक्र मुंतकिल करने का तरीका है। क्या? कि हम जब ये तसव्वुर शेख का मुराकबा करें, तो ये तसव्वुर करें कि मैं खुद बनफ्स नफीस अब्बा हूं। क्या मतलब हुआ? जब मैं बाप की नकल करूंगा तो मेरे अंदर बाप की तर्ज मुंतकिल होंगी या नहीं? भाई छोटे बच्चे माँ बाप की नकल ही तो करते हैं, और क्या करते हैं? उनके अंदर वो खानदानी रिवायात और बाप की शख्सियत पूरी की पूरी मुंतकिल होती है या नहीं? अगर हम अपने पीरो मुर्शिद की नकल ही करने पे आमादा नहीं है, हम उसकी तस्वीर सजा के उसकी आरती उतार रहे हैं और डंडोत बजा ला रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, अगर तसव्वुर शेख इस तरह करें कि मेरे मैं खुद अब्बा हूं, तो क्या होगा? मेरे अंदर हजूर मुर्शिद करीम की तर्ज फिक्र मुंतकिल होगी, फिर मुझे उनका जहन मुंतकिल होना शुरू हो जाएगा, फिर जब मजीद तरक्की करूंगा तो उनकी सलाहियतें मुंतकिल होंगी, फिर जब मैं मजीद लगा रहूंगा तो मुझे उनका इल्म अता होगा। मैंने चार दर्जे बताए मुराकबा तसव्वुर शेख के, कि सबसे पहले तो हमें हमारे अंदर उनकी कुछ तर्ज फिक्र की झलक उभरेगी, इसी को रंग चढ़ना कहते हैं, इसी को फैज भी कहते हैं भाई दबे, कि मुझे बड़ा फैज मिला। क्या फैज है? यानी मुर्शिद का रंग चढ़ गया। जब मुर्शिद करीम का रंग चढ़ेगा तो आपको उनकी तर्ज फिक्र हासिल होगी, फिर उनका जहन हासिल होगा, फिर उनकी सलाहियतें हासिल होंगी, बशर्ते कि आप नकल करने में जुते रहें। जी
थैंक यू सर, शुक्रिया।
वेलकम। और कोई सवाल?
ये जो है इंसान एक वली, खुदा शनास, पैगंबर, खास किस्म के रूहानी नकुश और खास किस्म के रूहानी सलाहियतें भी हो, ये नकुश और सलाहियतें ये कि यानी इन सब में मुख्तलिफ होती है?
जी हाँ, देखे ना, ये मुआशरती तर्जों में माँ बाप से जो शऊर हमें मिला, जो आबा अजदाद से शऊर मिला, जो हजरत आदम का शऊर है, वो सारा हमारे अंदर मुंतकिल होके आया। ठीक है, अब उसी शऊर का एक जाविया ये है कि मुझे लॉजिकली बात को कह रहा हूँ कि ये बात समझ में आ जाए कि अल्लाह ने मुझे क्यों तख्लीक किया। कुरान ने जवाब दिया, इन्नी जालो फिल अर्दे खलीफा, मुझे पता चल गया कि मखलूक होने के नाते मुझे अल्लाह की बात समझनी है। अगर आप इस चक्कर में पड़ गए, वली भी बन गए, खुदा शनास भी बन गए, अल्लाह के नायब भी बन गए, अदरवाइज लक टुणु टुणु। ठीक हो गया? अपना ख्याल रखें, रहती है बात। अच्छा, ये बहुत ज़रूरी है कि आप ये प्लीज़ एक एक ये बंदा जो है ना, इसको ऑफ करें, यानी उसको सुरख बटन को क्लिक करके तो छोड़ेंगे तो ये ऑफ होगा, वरना ये ऑन ही रहेगा, फिर वो कॉल नहीं आती जाती। यही हुआ था अभी जब वो क्लास सेशन ख़त्म हुआ, तो क्या हुआ कि आप कॉल कर रहे हैं और मुझ तक इत्तला ही नहीं आ रही, वो मैंने बंद करके रीस्टार्ट किया, तब जाके ये दोबारा आपका मैसेज आया मुझे। तो आइंदा ये एहतियात करें, ठीक है?